देवीं सरस्वती व्यासं ततो दयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 14, इनका शीर्षक है आदर्श परिवार का जीवन और श्लोक संख्या नंबर 12। तो कृपा करके सभी लोग मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। जायत्यत अर्थे स्वान प्राणा, जायत्यत अर्थे स्वान प्राणान हन्यात्वा पित्रं गुरुम्, हन्यात्वा पित्रं गुरुम् तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जायान्, तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जायान् यस्य तेन हि अजितोजिता, यस्य तेन हि अजितोजिता। जायात्यत अर्थे स्वान प्राणान, जायत अयत अर्थे स्वान प्राणान हन्यात्वा पित्रं गुरुम्, हन्यत्वा पित्रं गुरुम् तस्यां स्वत्वां स्त्रियां जायान्, तस्यां स्वत्वान् स्त्रियां जायान् यस्य तेन हि अजितोजिता, यस्य तेन हि अजितोजिता। हन्यत्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं माता जी जाय। माता जी से। शब्दार्थ इस प्रकार है, जायात छोड़ देते हैं, यत अर्थे जिसके लिए, स्वान अपना, प्राणान जीवन को, हन्यात मार डाले, वा अथवा पितरम पिता को, गुरुम गुरु या शिक्षक को, तस्यम उसमें, स्वत्वम अधिकार स्वामित्व, स्त्रियाम पत्नी में, ज्यायात त्याग दे, या जो तेना उसके द्वारा ही निसंदेह अजितः जो जीता नहीं जा सकता, जीता गया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक को मार डालता है, अथवा यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग सकता है तो वह उस भगवान को जीत लेता है जो अजय है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, प्रत्येक पत्नी अपनी प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहता है, अथवा अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना अतीव कठिन होता है, किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर भगवान की सेवा करता है तो किसी द्वारा भी वो न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त को वश में आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर भगवान की शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसलिए कौन सी भौतिक क्षति है? ग्रस्त जीवन का अर्थ है कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपनी पत्नी के विरक्ति तथा कृष्ण से आसक्ति। होम ज्ञानेन तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामियं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाम्बिदं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सिद्धे देवी प्रणमामि हरि प्रिये, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है, जब अर्जुन जब रथ में आरूढ़ थे, तो पहले अध्याय में जहां पर अर्जुन ने जब कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को सेनाओं के बीच ले चलो, उसी समय भगवान कृष्ण ने उनके रथ को सीधे जाकर भीष्म देव और द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर खड़ा कर देते हैं। भीष्म द्रोणा प्रमुख कथा सर्वेशम च महिषिताम वाचा पार्ता पश्यतन सम वेतान कुरुणीति। वहां पर भीष्म भगवान कृष्ण भीष्म देव और द्रोणाचार्य के समक्ष इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि कृष्ण को पता था कि अर्जुन के हृदय में इनके प्रति कहीं आसक्ति छुपी हुई है और यह साधक भक्त का बहुत बड़ा एक अनर्थ है। और वहां पर भीष्म देव को वर्णन किया गया है कि भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, और द्रोणाचार्य को वर्णन किया गया है कि हमारे भौतिक विज्ञान या विद्या को। हमारी भौतिक विद्या भी कभी कभी कृष्ण भावनामृत में बहुत अवरोध उत्पन्न करती है, और इस तरह ये दोनों को संबोधित किया है। और यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण के वाक्य को पालन करने में उनका रुकावट आ गया, और उसी समय अर्जुन ने नाना प्रकार के गिनती को शुरू किए, शारीरिक गिनती को शुरू किए। तत्र पश्चात स्थितान पार्ता पितृणता पिता महा आचार्य मातुलान भात्रन पुत्र पौत्रान सकिन तथा ससुरान सौदृश्चैव सीनियर उभ्योरपि। इस प्रकार सेनाओं के बीच में लेकर उन्होंने सभी लोगों को अपना संबंधी समझकर उसके प्रति आसक्ति को उन्होंने बढ़ा दिया। और इस प्रकार जो अर्जुन की जो अवस्था थी, वह अर्जुन उनके हाथों में जो गांधीव था वो सरक गया, जबकि उसका कर्तव्य था कि युद्ध करना, और उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे मुड़ गए। तो ये जो आसक्ति जो है, इस प्रकार व्यक्ति के सभी कार्यों को रुकावट या बाधा उत्पन्न करती है भौतिक संसार की आसक्ति। इसलिए कहा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर को धारण करता है, तो उस भौतिक शरीर को धारण करने से पांच प्रकार के उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है। सबसे पहला कि उसकी आसक्ति उसके शरीर से होती है, और दूसरा फिर तब जाकर वही आसक्ति अपने परिवार और संबंधी के प्रति बढ़ता है, और फिर तीसरा उनकी आसक्ति अपने अपने प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस या अपने व्यवसाय के प्रति उसका आसक्ति बढ़ती है, और फिर चौथा वह अपने स्वजन के प्रति उसका आसक्ति बढ़ता है, और इस प्रकार उसके अंततः गत्वा उनकी जो आसक्ति है वो धार्मिक कार्यकलाप के प्रति बढ़ता है। इस प्रकार वो धार्मिक कार्यकलाप जिसमें कृष्ण भावनामृत की प्रगति नहीं है, तो ऐसे पांच प्रकार की आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है, और वो जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य उसे वो खो बैठता है। इसलिए इस भौतिक संसार की आसक्ति को श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया, ऊर्ध्वम मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्रायुर अव्ययम। इस भौतिक संसार की आसक्ति को तुलना किया गया अश्वत्थम, यानी कि वो वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष, वो अश्वत्थ वृक्ष को आचार्यगण वर्णन करते हैं अश्व यानी कि जो नहीं, जो कल नहीं, और स्थ यानी कि है, जो कल नहीं है वो वस्तु पर व्यक्ति निर्भर करता है। जो आज दिखाई देता यही वस्तु कल नहीं रहेगी, उसका अर्थ है अश्वत्थ। और इस प्रकार ये भौतिक संसार की जो आसक्ति है वो उसी प्रकार है, और जो कोई संसार में रहकर आसक्ति को बनाए रखता है और अपने जीवन की चर्या को बनाए, अपने जीवन की चर्या को चलाता है, तो उसको कहा गया है सगोचरा, यानी कि एक पशु के समान उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बार एक कुछ योगी लोग आए थे, और प्रभुपाद जी को कहने लगे कि हम नाना प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं कि किस प्रकार हम भौतिक संसार में अच्छी तरह रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वर्णन किए उनको कि तुम्हारी स्थिति उस प्रकार है जैसे कि कोई बाथरूम में गया है और बाथरूम में जाकर सुविधा बना रहा है वहां पर हमेशा के लिए रहने के लिए। तो वो जो बाथरूम की जो उपयोगिता है वो केवल इतना है कि उनको अपने कार्यकलाप करके बाहर निकल जाना है। इस प्रकार ये संसार की जो आसक्ति है कुछ क्षण के लिए है, और उसमें से भी आज के जो श्लोक में नारद मुनि यहां पर युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे पत्नी की आसक्ति। अब युधिष्ठिर महाराज, अब पांच पांडव उनकी एक ही पत्नी है, लेकिन कभी भी किसी के प्रति कोई किसी का मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ। सारे पांचों के पांचे इतने मिलजुल कर थे और सभी कृष्ण भावनामृत होने की शक्ति के कारण यह संभवता था। तो उस प्रकार ग्रस्त आश्रम में रहकर कैसे जीना चाहिए, तो नारद मुनि वर्णन करते कि ये सारी आसक्तियों में से सबसे मूल जड़ जो भयंकर जो आसक्ति है वो है पत्नी की। इसलिए यहां पर श्री प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं कि स्त्री यानी कि क्या, स्त्री यानी कि आसक्ति का विस्तार, स्त्री यानी विस्तार, किसका विस्तार, आसक्ति का विस्तार। तो वो जो आसक्ति जो हमारे संसार में और डुबो देता है, हमारे संसार के कर्म बंधन में और फंसा देता है, वो है मूल जड़, वो है कि स्त्री। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया कि स्त्री से क्या होता है, क्या क्या परिणाम होते हैं, स्त्री के प्रति जब आसक्ति होती है तो क्या परिणाम होता है। तो वो व्यक्ति कभी कभी यत अर्थे, यहाँ पर यत अर्थे स्वान प्राणान, अपने स्वयं के प्राण को वो गवा देता है। किसके लिए, केवल स्त्री की संतुष्टि के लिए, अपने पत्नी की संतुष्टि के लिए अपने आप को भी बलिदान दे देता है। और दूसरा वर्णन किया गया है हन्यात्वा पित्रम, यानी कि कभी कभी अपने स्वजन माता पिता और पुत्र परिजन को भी वो त्याग इस प्रकार बलिदान देता है केवल अपनी पत्नी की संतुष्टि के लिए। और फिर साथ में कहा गया गुरुम, कभी कभी ऐसी भी अवस्था होती है, इतनी भयंकर अवस्था भी होती है कि वो कभी कभी अपने गुरु को भी बलिदान दे देता है केवल अपने पत्नी की संतुष्टि के लिए। छठे स्कंद में जहां पर कश्यप मुनि स्त्री के स्वभाव के विषय में वर्णन करते हैं, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये स्त्रियों का निंदा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन तत्पर भी स्त्रिया की कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं कश्चित प्रिय स्त्री नाम अंजसा स्वशिष आत्मनम पतिम पुत्रम भात्राम वा गृहंती अर्थे गहत्यांती च। तो वर्णन करते हैं नहीं कश्चित प्रिय स्त्रियाम, स्त्री के लिए कोई प्रिय वस्तु नहीं है, कोई उसकी प्रिय वस्तु नहीं है स्त्री के लिए, लेकिन अन्यच्चा स्वशिष आत्मनम, कभी कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए पतिम पुत्रम भात्राम वा, ये सारे पतिम पुत्रम भात्राम इन लोगों को भी कभी कभी खतरे में डाल देती है। और कहते हैं घिनंती अर्थे, और इन लोगों को भी कभी कभी कहते हैं कि इनको भी कहते हैं कि कभी कभी किसी का खून कर दो या मर्डर कर दो। और अन्यथा कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है अर्थे घात्यांतिया, कभी कभी दूसरे के द्वारा अपने ही पति को या स्वजनों को खत्म कर देती है अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो इस प्रकार कश्यप मुनि इस प्रकार जब वो पूरी तरह पछतावा कर रहे थे, जहां पर छठे स्कंद में वर्णन आता है, तो वो अपने पछतावा में इस श्लोकों को उन्होंने उच्चारण किया कि कैसे स्त्री के प्रति जब आसक्ति होती है तो किस प्रकार उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो कि पहला जो कहा गया है कि व्यक्ति अपने स्वयं को बलिदान दे देता है, तो जो वाकई जो जब कोई व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके कार्यकलाप करने की जो जो पीरियड है या जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अपने पत्नी की संतुष्टि के लिए वो बहुत प्रयास करता है या बहुत मेहनत करता है, और इस प्रकार वो प्रयास में लगा रहता है कि कभी कभी वो अपने जान को भी खतरे में लगाता है। अपने प्राण को भी खतरे में लगाकर, अपने प्राण को दाव पर लगाकर वो अपनी पत्नी की संतुष्टि के लिए इस प्रकार भरण पोषण के लिए भरपूर प्रयास करता है। तो वैसी स्थिति है कि ये उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भावनामृत ग्रस्त नहीं है। तो वैसी उन लोगों की स्थिति में क्या होता है कि उन लोग केवल अपनी पत्नी के संतुष्टि के लिए वो उनका नौकर बन जाते हैं, और इसलिए कहा गया जोड़ू का गुलाम बन जाता है। तो वैसे उसकी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ तक कि ऐसे वर्णन है कि एक बार अकबर और बीरबल के बीच में वार्तालाप हो रहा था। तो अकबर को बीरबल कहने लगे कि उन्होंने जैसे एक दृश्य देखा, और दृश्य क्या देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था, और उस लंबे चौड़े व्यक्ति को एक दूसरी उसकी जो धर्म पत्नी थी, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की जय, जो उनकी जो दूसरी धर्म उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कहने लगी और बहुत उनको चिल्लाने लगी, चिल्लाते चिल्लाते, और ये जो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ये केवल सर नीचे करके सब सुन रहा है, और अकबर बीरबल को दिखा रहा है क्या हो रहा है। और ऐसे होते होते जब सिचुएशन इतना क्लाइमेक्स से इतना भयंकर हो गया कि पत्नी ने एक जोरदार बजा दी, और पति तो खा के रह गए, कुछ किए नहीं, तो अकबर को रहा नहीं गया। अकबर ने कहा क्या हो रहा है, तो बीरबल ने कहा महाराज पूरे राज्य में यही स्थिति है, जो एक बार विवाह कर लेता है तो उसकी यही स्थिति हो जाती है। तो अकबर ने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो बीरबल ने कहा आपको विश्वास नहीं है तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो दूसरे दिन ऐलान कर दिया, सबको ढिंडोरा पीट के सबको बुलावा किया और कहा कि इस समाज में, इस नगर में जितने भी मर्द हैं जो अपने आप को तथाकथित पुरुष कहते हैं, वो सामने आइए और राजा उन राजा से मुलाकात करिए। और कई लोग आ गए और कई लोग आके वहां पर जमा हो गए। तो अकबर ने यह प्रश्न पूछा सभी लोगों को, जो जो लोग अपनी पत्नी की बात को सुनते हैं वो एक तरफ आ जाओ, और जो नहीं सुनते वहीं रहो। तो सारे के सारे भीड़ एक तरफ आ गया और एक ही व्यक्ति खड़ा था। तो अकबर ने कहा देखा बीरबल, एक तो निकला। तो बीरबल ने पूछा उनसे पूछो तो सही क्या बात है, क्यों खड़ा है। तो उन्होंने पूछा अच्छा आप क्यों इधर खड़े हो। ने कहा नहीं, मेरी बीबी ने कहा है कि भीड़ भाड़ से दूर रहो। तो ये स्थिति है। एक बार मुझे किसी का SMS आया था, SMS में लिखा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछ रहे हैं, अरे भैया तुम तो बहुत शेर होते हो, बाहर तो कितने शेर हो लेकिन घर जाके क्या हो जाता है पत्नी के सामने। नहीं क्या होता है, केवल दुर्गा मुझ पर सवार हो जाती है और कुछ नहीं। तो ये स्थिति है कि लोग स्वान यानी कि अपने प्राण को भी बलिदान दे देते हैं और उनका नौकर बन जाते हैं। ये आजकल की स्थिति नहीं, पूर्वज इतिहास के कई ऐसे बड़े बड़े महारथी लोग थे जो अपने पत्नी के प्रति गुलाम थे। जैसे राजा भद्रहरि, ये इस प्रकार शूरवीर थे, ऐसे युद्ध करते थे, कई हजारों की संख्या में लोगों को परास्त करके जब आते थे घर पे तो अपना मुकुट जो था अपनी पत्नी के चरण पे रख देते थे। उनकी पत्नी धर्मपत्नी उनकी जो रानी थी इतनी सुंदर थी कि उसके ऊपर उन्होंने 100 श्रृंगार शतक लिखा था। उनकी सुंदरता के ऊपर 100 श्लोक लिखे थे। और ये स्थिति एक गुरु ने देखा, एक साधु ने देखा और सोचा कि इसकी बहुत बुरी स्थिति है, इनको सुधारना पड़ेगा, और इसीलिए उनको एक मणि दिया और कहा कि इसे आप अपने पास रखना। और उन्होंने उस मणि को लिया और उस गुरु ने उस साधु ने कहा था कि इस मणि को उसी को भेंट देना जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, सबसे अति प्रिय तुम्हारा जो प्रियसी है उसी को ही देना। और उन्होंने क्या किया, उस मणि को अपने रानी को दे दिया और रानी को कहा कि तुम इस मणि को उसी को देना जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। और इस प्रकार कहे के कई दिन बीत गए। तो वहां की उसी नगरी की एक वैश्या जो थी वो आई, वो राजा के हाथ में ये मणि दिया। राजा देख के हैरान हो गया, ये मणि तो मैंने मेरी पत्नी को दिया है, वैश्या से कैसे मुझे मिल रहा है। तो राजा ने पूरा जितने भी घटना थी सारी घटना को ठीक से टटोला तब पता लगाओ हो, ये तो बहुत भयंकर स्थिति है। या चिंतिया मी सततम मैसा भी रखता सा चान्य छी चति जनन सजनो अन्य रखता अस्मकृते च परि दुष्य काचिर अन्य अधिकतम चतम च मदनम इमाम च माम च। वह कहने लगे मैं जिस स्त्री के प्रति चिंतन करता था, या चिंतिया मी सततम मैसा भी रखता सा चान्य अन्य छति जनन सजनो अन्य रखता, लेकिन मेरी पत्नी किसी अन्य को चिंता करती थी और इसीलिए मेरी पत्नी ने मेरे ही राज्य के सेनापति को उन्होंने मणि दिया और वो सेनापति ने दूसरे को दिया और उन्होंने दूसरे को दिया, उन्होंने इस वेश्या को दिया और ऐसे घूमते घूमते ये अब मेरे पास आया है। और वो कहने लगे धिक्ताम चतम च मदनम इमाम च माम च। ये केवल स्त्री की आसक्ति केवल दुख ही उत्पन्न करने वाली है। और इस प्रकार उनके हृदय में इतना वैराग्य आ गया कि उन्होंने फिर 100 वैराग्य शतक लिखा, 100 श्लोक वैराग्य शतक लिखे, जिससे उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार स्त्री आसक्ति किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न करता है, केवल दुर्भाग्य उत्पन्न करता है। एक युवक लड़का जाके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कमलोचन प्रभु बता रहे थे, तो बता रहे थे कि एक युवक लड़का भगवान से जाके प्रार्थना कर रहे थे कि ये भगवान मुझे दुख दो, मुझे बर्बादी दो, मेरे जीवन में केवल दुर्भाग्य उत्पन्न हो और मेरे जीवन में केवल अकाल आए। तो भगवान ने कहा एक ही शब्द में बोलो ना कि मुझे पत्नी दो। तो इस प्रकार लोगों की इस प्रकार श्वसान। और फिर दूसरा है पित्रान, और कभी कभी अपने ही स्वजन या पिता माता को वो कभी कभी बलिदान दे देते हैं केवल पत्नी की संतुष्टि के लिए। और ये देखा जाता है कि बालक बहुत अच्छी तरह माता पिता का सुनता है, लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है तो फिर वो पत्नी का सुनने लगता है, फिर उसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट हो जाता है, सेपरेट घर भी हो जाता है। जिसने जिसको भरण पोषण किया उसको ही छोड़कर वो अपने घर बार छोड़ के एक अलग चूल्हा जला देता है, यानी एक अलग घर बना देता है। तो वैसी जो पुत्र अपने पिता के प्रति जो उनका जो कर्तव्य है उसको त्याग कर वो केवल अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो जाता है। और फिर कहा गया गुरुम, और साथ साथ में वो कभी कभी अपने गुरु को भी बलिदान दे देते हैं। तो गुरु के जो वाक्य है उसको कभी नहीं सुनते। कभी कभी हम मैराथन में जब भगवद गीता वितरण करते तो वितरण में जब हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी जब दोनों आते हैं तो पति जो होता है वो कभी कभी गीता खरीदने जैसे ही पैसे निकाले पत्नी कहती क्या जरूरत है छोड़ो चलो, और तुरंत ही वो हाँ हाँ ठीक है, गीता भी नहीं खरीदते। और जब उनसे पूछते क्यों नहीं खरीद रहे, नहीं इन्होंने मना किया है। तो वहां पर भी वो अपने जो आध्यात्मिक कार्यकलाप के प्रति जो रुकावट भी यही आ सकती है। इसलिए जैसे कि हमारे कृष्ण प्रभु जो कि कल्याण में एक भक्त है, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सिंसियरली वो भक्ति को अपनाए थे। पहले तो उनका बियर बार वगैरह सब था, लेकिन कृष्ण प्रभु ने उनको प्रचार करके बियर बार सब बंद कराकर उनको वेज रेस्टोरेंट कर दिया और सारा भोग लगकर उस लोगों को खिलाया जाता है वहाँ पर। इस प्रकार उन्होंने पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया। तो जब वहाँ पर बियर बार था तो पत्नी उनके साथ बहुत अच्छी तरह थी, लेकिन जब कृष्ण प्रभु ने उनको जब प्रचार किया तो उन्होंने सब बदल दिया तो पत्नी गुस्से से घर छोड़ के चली गई, बोला मेरा पति पागल हो गया। लेकिन हुआ क्या कि केवल 2 साल में उन्होंने 10 साल में जितना कमाया नहीं था वो 2 साल में कमा लिया। पत्नी समझ गई हाँ मेरा पति बुद्धिमान है, वापस आ गए। तो ये स्थिति है कि जब पत्नी देखती है कि पति के पास भरपूर आ गया है तो चल सके। और ऐसे स्थिति तो इस प्रकार गुरुन जो गुरु के जो वाक्यों को भी जो रुकाने वाला वो भी इस प्रकार पत्नी के प्रति आसक्ति ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति के गुरु के वाक्यों को भी रोकती है। अब ये जो है एक ग्रस्त आश्रम के लिए इस प्रकार था, लेकिन अब इसको हम ब्रह्मचारी के लिए कैसे समझे। तो वैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए, एक वैरागी के लिए ये कैसे श्लोक अपना सकते हैं, तो वैसे कहा गया है कि जो कोई वैरागी होता है वो एक नहीं दो नहीं वो छह छह पत्नी के साथ रहता है। जब परीक्षित महाराज ने पांचवें स्कंद में जहां पर पांचवें स्कंद के पहले अध्याय में पहले श्लोक में उन्होंने प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी से, प्रियव्रत भागवता आत्माराम कतम मुने गृह रमता यन मूलम कर्मबंध प्रभावः। वो पूछने लगे प्रियव्रत भागवता, प्रियव्रत महाराज जो इतने बड़े महाभागवत थे, लेकिन इतने बड़े महाभागवत होकर भी आत्माराम कतम मुने, वो आत्माराम में रमण करते हुए भी गृह रमता यन मूला, वो गृह आश्रम में कैसे प्रवेश हो गए यन मूला, और वो कौन सा जड़ है कर्म बंधा यन मूला, जो कर्म बंधन का मूल जड़ है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रभावा, वो अपने मनुष्य जीवन को ऐसे कैसे गवा दिया, इस प्रकार ग्रस्त आश्रम में प्रवेश होकर, वो जो ग्रस्त आश्रम जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को गवा देता है। तो परीक्षित महाराज के मन में संशय उठा ऐसे कैसे हुआ, तब सुखदेव गोस्वामी उसके उत्तर में कहते हैं कि नारद मुनि का एकदम प्रिय पक्का शिष्य था प्रियव्रत महाराज, और नारद मुनि उनको बहुत अच्छी तरह शिक्षा दे रहे थे, मगर हुआ क्या कि संसार में जनसंख्या या संसार के राज्य या सम्राट राजा का कोई पदवी संभालने वाला नहीं था, और मनु महाराज स्वयंभू मनु जो थे वो आए अपने ज्येष्ठ पुत्र जो कि प्रियव्रत महाराज को आकर समझाए कि आप कृपा करके ग्रस्त आश्रम में प्रवेश हो जाओ। तो इन्होंने ये तो विचार करने लगे मैं क्यों ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करूं, वो ग्रस्त आश्रम जो अंधकूपम उसमें मैं वापस जाके क्यों फंसू, मुझे नहीं जाना है, तो नकार कर रहे थे। तो उसी क्षण ब्रह्मा जी अपने धाम को छोड़कर वे यहां पर आए, और जैसे यहां पर आए जैसे उन्होंने इस पृथ्वी में जैसे उन्होंने अपने विमान को उतार के जैसे ही खड़े हुए तो सभी लोग ने आदर सम्मान दिए, और उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे प्रियव्रत महाराज को समझाने लगे कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम पत्नी नहीं रखना चाहते हो, वास्तविक में तुम अब सभी लोग अपने साथ छह छह पत्नियों को रखा हुआ है। और वो कहते हैं भयम प्रमत्तस्य वेणु अपि स्यात्, भय से तुम सोच रहे हो कि जंगल चला जाए, जंगल जाकर मैं अकेले बैठ जाऊं, यथा स अष्टे सह सट पटनम स पतनम, लेकिन जंगल एकांत में जंगल में भी जाने के बाद भी तुम्हारे साथ छह छह पत्नियां हैं सब पत्नम, और वो क्या है मन और पांच ज्ञान इंद्रिया आक नाक कान जीवा त्वचा और साथ में मन, तो ये हमारी छह पत्नी हैं। और ये छह पत्नी कभी कभी ऐसी भी अवस्था होती है कि वैरागी भक्त जो होता है वैरागी जो होते हैं कभी कभी इस पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि इसकी ये सब दशा हो जाती है। और वो क्या है कभी कभी इसी पत्नी की संतुष्टि के लिए वो कभी कभी आत्महत्या भी कर देता है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन से वो आत्महत्या कर देता है, स्पिरिचुअल सुसाइड। इसलिए जैसे कि उदाहरण में आता है भरत महाराज, राजा भरत जो थे वो अपने पूरे राज्य को त्याग कर वो सीधे जंगल चले गए और सोचे कि अब मेरे पास कोई पत्नी नहीं है, लेकिन वो जंगल में भी गए तो छह पत्नी के साथ गए थे, और वहां पर भी हुआ क्या कि एक हिरण का जो बच्चा था उस बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, और ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते जागते केवल उसी के विषय में वो स्मरण करने लगा, और भगवान के प्रति स्मरण छूट गया, और स्थिति क्या हुई कि उनको दूसरा जन्म हिरण का मिला, और जब हिरण के शरीर में जब आए तो वो कहने लगे समहितम मनस्तत्तु पूर्णा मम भूत अभूत अरण्य मृगस्तुतम अनु परिशु श्रवा, वो कहने लगे कि मैंने मेरा जीवन कैसे गवा दिया, मैंने इतना अच्छा वैराग्य जीवन जी रहा था, लेकिन वैराग्य जीवन होने के बाद भी एक मृग वत्स एक मृग हिरण के एक वत्स के प्रति मेरी आसक्ति हो गई। तो कभी कभी साधक भक्त जब भक्ति में या कार्यकलाप में लगा रहता है साधना में तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार मन मोहने वाला जो हिरण जो है इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन साधक भक्त को बड़े सावधानी से अपने हृदय को उसे संभालना चाहिए। भरत महाराज से शिक्षा लेके भरत महाराज समझा रहे कि कभी कभी ऐसे हिरण जो होता है जो हमारे मन को आसक्त कर देता है और ऐसे आसक्त कर देता है कि उसका मन उसी में रम जाता है, और यह हिरण अलग अलग प्रकार से उसके पास आ सकता है किसी भी तरह से, तो कभी स्त्री, कभी मोबाइल या कभी कंप्यूटर, नाना प्रकार की वस्तु है, किसी के भी द्वारा भी यह हिरण का स्वरूप उसके सामने आ सकता है और उसकी अवस्था भरत महाराज जैसी हो सकती है। इसीलिए वो पत्नी के उस पत्नी को उसे संभालना है, और फिर दूसरा है हन्यात पित्रम, कभी कभी उसके लिए उनकी संतुष्टि के लिए, अपने ही पत्नी की संतुष्टि के लिए कभी कभी वो अपने स्वजन को भी मार देता है। जैसे कि कंस जो था बड़े अच्छी तरह उन्होंने रथ पर आरूढ़ करके देवकी को, अपनी ही बहन को लेकर जाके विदा कर रहे थे, बहुत सारे सोना दागिना वगैरह उन्होंने दान दिया था, हाथी घोड़ा सब कुछ था, लेकिन जैसे उनको आकाशवाणी सुनना पड़ा कि अष्टयम अस्यत्वम अष्टम गर्भ हंतायम वसे बुधा, ये मूर्ख तुम्हारा, इनका जो आठवां जो पुत्र है तुम्हारा मृत्यु का काल का स्वरूप बनेगा, जैसे ये सुना तो उनकी बुद्धि फिर गई। वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसकी इंद्रिया वशीभूत नहीं है, यानी कि जिन्होंने अपनी इस इंद्रियो रूपी पत्नी को वशीभूत नहीं किया है, वही उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी भी प्रकार का कार्यकलाप कर सकता। और उन्होंने क्या किया, तम जुष्पिता कर्म नाम निर्शम निरपत्रपम, उन्होंने तुरंत ही ऐसे बेशर्मी से उन्होंने क्या किया, तलवार लेकर अपनी बहन के ऊपर रख दिया, एक क्षण में कैसे उनका मन बदल गया। इस प्रकार कभी कभी अपने ही स्वजन के प्रति वो इस प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं। तो इंद्रिय विषय भोग इसी प्रकार है, इंद्रिय विषय भोग ऐसी वस्तु है कि जब इस इंद्रिय विषय भोग में जब कोई बाधा देता है तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। इन्होंने मेरे विषय भोग में बाधा दिया है तो ये मेरा दुश्मन है, और उसके प्रति वो अपनी दुश्मनी को व्यक्त करता है। जबकि जो हमारे इंद्रिय विषय भोग में बाधा देता है वो हमारा सबसे प्रिय मित्र है, उसे ऐसे समझना चाहिए कि ये व्यक्ति ने मेरे विषय भोग में रुकावट दिया है तो मतलब है मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन जबकि उसके विषय में उल्टा सोचते हैं। और ये किसकी स्थिति है, जो व्यक्ति अपने ही इंद्रिय के प्रति आसक्त है। और तीसरा है हन्यात गुरुम, हन्यात कभी कभी अपने गुरु को भी वो मार देता है, और इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है इंद्र। जब इंद्र ने बृहस्पति जब आए थे तो इंद्र ने उनको आदर सम्मान ना देकर बैठे ही रहे, बोले इनके सामने मैं क्यों खड़े रहूं, और वो घमंड के कारण उनके सामने खड़े नहीं हुए। लेकिन हुआ क्या कि इंद्र की सारी शक्ति छीण हो गई, और जिसके कारण असुर लोग ने उनके ऊपर आक्रमण कर उनको वहां से भगा दिया, और ये सारे लोग बृहस्पति को ढूंढ रहे लेकिन बृहस्पति अव्यक्त हो गए। और तब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है अब आप क्या करो, जाइए विश्वरूप के पास जाइए, विश्वरूप को गुरु बनाकर आप उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करिए। और इंद्र सारे देवतागण गए विश्वरूप के पास, जिनकी तीन शिष्य था, और उन्होंने उनको बहुत आलिंगन करके गुरु के रूप में सम्मान देकर उन्होंने कहा अब आप कृपा करके हमारे गुरु बन जाइए, और उन्होंने गुरु बनकर उनके यज्ञ अनुष्ठान करके उनके यज्ञ के फल देवताओं को अर्पण करने लगे, लेकिन एक मुख से वो असुर को अर्पण करते थे। क्योंकि विश्वरूप जो थे उनके पिता त्वष्टा, जो कि देवताओं के कुल से आए थे, और उनकी जो पत्नी थी रचना, जो कि असुर कुल की थी, इसलिए उनको थोड़ा बहुत आसक्ति असुर के प्रति भी था, इसलिए एक मुख से वो असुरों को भी दान देते, यज्ञ का फल अर्पण करते थे। जैसे इंद्र को पता लगा कि ये विश्वरूप गड़बड़ कर रहा है, और तुरंत ही उन्होंने तत्देवा हेलम तस्य धर्म किलम सुरेश्वरा, और तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अलक्ष्य तरस्य भीता तत्शनि अचिंत रसा, उन्होंने क्रोध में उनके तीनों सर को गर्दन से काट दिया। अब वही गुरु जो कि उनके उनके रक्षा के लिए कार्यकलाप कर रहे हैं, लेकिन उनका ही उन्होंने शीश काट दिया। तो कभी कभी ऐसे भी स्थिति होती है कि जब गुरु भी अगर विषय भोग में बाधा देते हैं तो उन लोग उसको तुरंत ही त्याग देते हैं। इसलिए आज के तारीख में लोगों को गुरु चाहिए, लेकिन कैसा गुरु चाहिए, केवल फोटो में दिखने वाला,
बहुत अच्छा मुस्कान दे और फोटो में दिखता हो वैसे ही गुरु अच्छा लगता है। बोलने वाला गुरु है तो फिर नहीं, क्यों? क्योंकि बोलने वाला गुरु कभी कभी चाय भी बंद करने बोलते हैं, इसलिए बोलने वाला गुरु नहीं है, चुप रहने वाला गुरु चाहिए। बोलने वाला गुरु मेरे विषय भोग में बाधा देते हैं। इसीलिए जहां पर महाभारत में प्रसंग आता है एकलव्य का, एकलव्य जो थे इन्होंने जब द्रोणाचार्य के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए, तो उसी समय द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा नहीं दिया। द्रोणाचार्य परखना चाहते थे क्योंकि वो शूद्र कुल से था, और द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि मैं क्षत्रिय का विद्या इस शूद्र को अर्पण करूं। और उन्होंने क्या किया, एकलव्य ने अपने आप से उन्होंने द्रोणाचार्य का विग्रह बनाकर उनको पूजनीय रूप में स्वीकार करके, उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर उन्होंने युद्ध की कला पूरी तरह ऐसे निपुणता पूर्वक सीखा कि वो शब्द भेद प्राण बाण फेंकने में भी वो निपुण हो गया था। और इसीलिए एक समय की बात थी जब द्रोणाचार्य अर्जुन पांच पांडव जब आ रहे थे जंगल से विचरण कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि ये कुत्ता जिसके मुख में ऐसे बाण धस गया कि कुत्ता बोल भी नहीं पा रहा, कुछ कर भी नहीं पा रहा और छटपटा रहा है। और ये द्रोणाचार्य ने देखा और तुरंत ही उन्होंने पता लगाया, तब पता लगा कि ये एकलव्य है। एकलव्य जैसे ही आए तब उन्होंने, एकलव्य ने उनको प्रणाम किया गुरुवर, और तब उन्होंने कहा ठीक है तुमने मुझसे ये मेरे विग्रह को बनाकर मुझसे ये शिक्षा लिया है तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दो, और उन्होंने उनके दाएं हाथ के अंगूठे को ले लिया। तब उसी समय आचार्यगण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके टीका लिखते हैं कि क्यों एकलव्य के अंगूठे को ले लिए। वो इसीलिए क्योंकि एकलव्य जो था उन्होंने द्रोणाचार्य के विग्रह को बनाकर सारी शिक्षाओं को उन्होंने प्राप्त किया था। तो द्रोणाचार्य के विग्रह को बनाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था ताकि कलयुग में लोग ऐसा ना करें कि गुरु के प्रतिमा को रख कर वो सारी विद्या को सीखे। बस मुझे बोलने वाला गुरु नहीं चाहिए, फोटो वाला गुरु चाहिए। तो ये परंपरा को खंडन करने के लिए वहां पर द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठे लिए। तो वैसे सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कई कारण है, उसमें से एक कारण ये बताए। तो इस प्रकार जो गुरु जो होता है, जब किसी साधक भक्त के जीवन में जब कहता है कि अब आपको ये सब वस्तुओं को त्यागना है तो उसे सहा नहीं जाता है, तो कभी कभी वो ऐसे लगता है कि गुरु मेरा दुश्मन है, जबकि नहीं। तो वैसे सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए इसलिए यहाँ पर कहा गया है तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जायत यस्तेना ही अजितो जिता। इसलिए यहाँ पर नीचे के दो श्लोक दो लाइन में कहा गया है कि उसे अपने ही जो पत्नी है जिसके प्रति उनकी आसक्ति है उसको पहले त्यागना है। इसलिए जब कोई साधक भक्त, ये साधक भक्त को कैसे अप्लाई होगा कि जिस प्रकार एक साधक भक्त की जो छह इंद्रिया जो है उसे पूरी तरह गुरु की सेवा में लगानी चाहिए। इसलिए कहा गया है ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्षते। इस प्रकार उनकी जो छठ सब पत्नी, सारे पत्नियों को कृष्ण की सेवा में लगा। उसके आगे ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हारी जो छह पत्नी है वो भगवान की आज्ञा के पालन में लगाइए। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें ग्रस्त आश्रम में जाना है। तो भगवान ने जब कहा था तब प्रियव्रत महाराज गए थे, प्रियव्रत महाराज भी घबरा रहे थे। तो इस प्रकार जो साधक भक्त है उनके लिए ये कहा गया है कि उन्हें अपने जो छह पत्नी है उसे उसके प्रति स्वामित्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर ये भावना रखे कि इस पत्नी का स्वामी मैं हूँ तब फिर उसके लिए वो नुकसानदायी है। इसलिए एक बार सरस्वती ठाकुर के पास उनके शिष्य ने बहुत सारे दान वगैरह जब लेकर आए थे, और बहुत सारे दान वगैरह लाकर उन्होंने कहा गुरु महाराज आज मैंने बहुत सारे दान लेकर आए, तो सरस्वती ठाकुर कहने लगे अपने दूसरे शिष्य को, ये मूर्ख सोच रहा है कि अभी भी ये इन्होंने दान लेकर आया, लेकिन इस मूर्ख को ये नहीं पता कि ये पूरी तरह मेरा ही संपत्ति है। ही होल्ड सोलली बिलोंग्स टू मी एंड इज थिंकिंग हिमसेल्फ एज आई हैड ब्रॉट सो मच चैरिटी फॉर गुरु स्पिरिचुअल मास्टर। वो पूरी तरह, वो सरस्वती ठाकुर कहते कि वो पूरी तरह मेरा ही है, वो व्यक्ति, वो मेरा जो शिष्य है वो मेरी संपत्ति है, और वो कह रहा है कि मैंने लाया। तो मैंने लाया व्यक्ति तब बोलेगा जब वह अपने आप को गुरु से अलग समझता है। तो मैं की भावना तब उत्पन्न होगी जब वो अपने आप को गुरु की संपत्ति नहीं मानता है। इसलिए सरस्वती ठाकुर वहां पर शिक्षा दे रहे थे कि ये जो शिष्य है यही मेरी संपत्ति है, तो इन्होंने क्या लाया, इन्होंने नहीं लाया, वो तो मैंने ही लाया। इस प्रकार और ग्रस्त लोगों के लिए बताया गया है, जो कि इसके पिछले वाले श्लोक में कल लाल गोविंद प्रभु भी इसी के विषय में बता रहे थे परसों के दिन, कि वो जहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर पति अगर पत्नी के प्रति एकदम आसक्त है तो उन्हें अपनी पत्नी को सेवाओं में लगाना चाहिए। तो वहाँ पर एक बहुत विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, और वो विरोधाभास इस श्लोक से बच सकता है। और वो क्या है, वयम रसम तत्र महानीलांबुरीर नियस्य मना महुर अम्बु संप्लवे। जब सुदामा जब गए थे भगवान कृष्ण से मिलने, तो उस समय जब भगवान कृष्ण से मिलने गए थे तो उसी समय कृष्ण ने सुदामा को कहने लगे, आ सुदामा आ गए। और तुरंत ही पहले कृष्ण ने सुदामा को वही घटना याद दिलाई कि हम जंगल गए थे, और जंगल में गए थे गुरु की आज्ञा का, कि गुरु ने कहा था कि जाओ लकड़ी काट के लाओ, तो जंगल में गए थे, तो वहां पर कैसे हम राह भटक गए थे, अंधकार हो गया था। पहले उन्होंने यही घटना याद दिलाई, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि बारिश जोर से गिरने वाला था और बहुत तूफान जैसे वातावरण हो गया था। और उसी समय दोनों जन ने, कृष्ण ने और सुदामा ने लकड़ी काटा, एक हाथ में लकड़ी था, दूसरे हाथ में दोनों जन ने आपस में हाथों को पकड़कर आगे बढ़े और अपने आश्रम में पहुंचे। तो वहां पर वर्णन आता है कि एक हाथ में लकड़ी था, दूसरे हाथ में दोनों जन ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा था, यानी कि आपस में भक्तों की सेवा के साथ साथ गुरु की आज्ञा का पालन भी करना है। तो गुरु ने जो वाक्य जो दिया है वो एक हाथ में था, दूसरे हाथ में सेवा था, यानी कि भक्तों के प्रति संबंध और साथ साथ में जनसंख्या की सेवा और साथ साथ में गुरु के वाक्य को पूर्णा करना। तो इस प्रकार गुरु का मुख्य आदेश है, और इसमें अगर कोई तोड़ मोड़ कर अगर सेवा करता है तो फिर वो गुरु की आज्ञा नहीं है। तो इसीलिए गुरु की आज्ञा को प्रथम उसको गौर किया जाता है, तब जाकर वो दूसरों की सेवा में लगा सकता है। इस प्रकार पत्नी को सेवा में लगाना चाहिए, ऐसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है। तो उस प्रकार गुरु की आज्ञा का ज्यादा, इसलिए कमलोचन प्रभु भी बता रहे थे कि परमार्थ मार्ग को मुख्य जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बताते कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि किस प्रकार पत्नी के प्रति आसक्ति को कैसे खत्म करना चाहिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तो एकदम हाई स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने क्या कहा, उनके एक ग्रस्त शिष्य आए, तो शिष्य गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि कैसे चल रहा है। तो इन्होंने कहा बस आपने जैसा बोला वैसे कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से दूर रहता हूँ और अपने सारे नियमों को पालता हूँ, आपने जैसा बोला वैसे कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम भोजन क्या कर रहे हो। तो बोले मेरी पत्नी बना कर देती है वो मैं खाता हूँ। तो बोला यही तुम्हारी गलती है, तुम पत्नी बनाकर दे रहे हो, पत्नी का स्वाद को भोजन से ग्रहण कर रहे हो और इस प्रकार पत्नी का संग कर रहे हो, इसलिए क्या करो। तो इन्होंने पूछा मैं क्या करूं। बोला तुम भोजन बनाओ और तुम पहले पत्नी को खिलाओ और उसका उच्चिष्ट खाओ, फिर यह समझो कि मैं अपने पत्नी का बहुत ही नम्र सेवक हूं, फिर तुम्हारी जो भोगने की भावना खत्म हो जाएगी। इस प्रकार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत हाई स्टैंडर्ड का फिलोसॉफी बता रहे थे। तो इस प्रकार जो विरक्ति है, विरक्ति तब उत्पन्न होगा जब हमारा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना में भी वो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि अथ विश्वस्य विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम इमं छिन्दि दृढ़ पांडुषु विष्णुषु। कल प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर दिए थे लेक्चर कि दृढ़ पांडुषु विष्णुषु, कुंती महारानी की दोनों आसक्ति थी, एक थी वृष्णि वंशी के प्रति और पांडुओं के परिवार के प्रति, और कुंती महारानी कह रही है कि इसके प्रति मेरी गाढ़ आसक्ति हो गई, कृपा करके इसको काटिए। लेकिन केवल काटिए ही नहीं, साथ साथ में उसके बाद वाले श्लोक में कुंती महारानी कहती है त्वये मे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्भत अधा गंगेश्व उधनवती। वो कहने लगे कि जिस प्रकार जो प्रेम जो है, जिस प्रकार गंगा जो है वो स्वाभाविक रूप से समुन्दर में जाके मिलती है, उसी प्रकार मेरे हृदय से जो प्रेम है स्वाभाविक रूप से आपके चरण कमल पर जाकर मिले बिना कोई रुकावट का। गंगा को कितना भी रुकाओ वो अंततः गत्वा वो समुन्दर में जाके मिलने ही वाली है। उसी प्रकार किसी भी तरह की मेरे जीवन में बाधा भी आए लेकिन अंततः गत्वा मेरे हृदय से जो प्रेम निकल रहा है वो आपके चरण कमल तक पहुंचे। इस प्रकार विरक्ति के साथ साथ उन्हें कृष्ण के प्रति अनुरक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते कि कैसे भगवान के प्रति आसक्त, कैसे हम संसार से विरक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल विरक्ति हो जाना है, उसे भगवान के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करना है। जैसे कि अगर मान लो किसी के हाथ में करताल है तो उसको बुक लेना है, तो उसे करना है क्या, करताल को छोड़ना और बुक लेना है। लेकिन करना क्या, उसे करताल छोड़ने का प्रयास नहीं करना, बुक लेने का प्रयास करना है। तो जैसे बुक लेने के प्रयास में रहेंगे तो करताल अपने आप छूट जाएगा। और इसी प्रकार भूरीजन महाराज भी यह उदाहरण देते हैं, यही उदाहरण, और साथ साथ में ऐसे भी कहते हैं कि मान लो कि किसी को मंदिर जाना है तो मंदिर के लिए जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो घर छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ा, घर अपने आप पीछे छूट गया केवल मंदिर के तरफ आगे कदम बढ़ने से। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करेंगे स्वाभाविक रूप से ये जो अनर्थ जो है नष्ट प्रायशिशु भद्रेशु वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो 9 बज गया है, कोई प्रश्न कोई या टीका टिप्पणी कुछ कमेंट है तो बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की।